स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 8 मार्च और दिन मंगलवार। सोमालिया में अमरीकी ड्रोन हमला, 150 से ज्यादा चरमपंथियों को मारने का दावा।
The fighters who were scheduled to depart the camp pose an imminent threat to US and African Union mission forces in Somalia.
आज से शुरू हो रहा है 2020 विश्व कप टूर्नामेंट, लेकिन पाकिस्तानी टीम के आने पर संशय बरकरार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर चलेंगे जयपुर के श्याम नगर मेट्रो स्टेशन।
अच्छा लगता है सब जगह पे ये देख करके कि महिलाएं किसी भी फील्ड में आज पुरुषों से कम नहीं है, और ये श्याम नगर स्टेशन बना के हमने प्रूफ भी किया है।
अखबारों की समीक्षा और खेल समाचार भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार अजय शर्मा से। अमरीकी सेना ने सोमालिया में चरमपंथी संगठन अल शबाब के ठिकानों पर हमले करने का दावा किया है। पेंटागन के मुताबिक इस हमले में सेना ने 150 से ज्यादा चरमपंथियों को मार दिया है। ये हमले हवाई थे और राजधानी मोगादिशु से करीब 200 किलोमीटर उत्तर में एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाकर किए गए। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कहा है कि शरणार्थी संकट को लेकर उनका तुर्की के साथ एक समझौता हुआ है, जिसमें मोटे तौर पर तय हुआ है कि ईजियन सागर से यूरोप पहुंच रहे शरणार्थियों की भारी तादाद को लेकर क्या किया जाना चाहिए। दोनों के नेताओं ने ब्रसेल्स में मुलाकात भी की। हालांकि समझौते की पूरी जानकारी ईयू नेताओं की 17 मार्च को होने वाली बैठक तक के लिए टाल दी गई है। रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने कहा है कि वो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए हुए ड्रग टेस्ट में असफल रही थीं। शारापोवा को 12 मार्च से अस्थायी तौर पर जांच चलने तक निलंबित कर दिया गया है। लॉस एंजल्स में मीडिया के सामने आई शारापोवा ने कहा कि मेलजोनियम नाम की ड्रग की जांच में उन्हें पॉजिटिव पाया गया, जिसे वो सेहत की वजह से पिछले 10 साल से ले रही हैं। इस ड्रग को पिछले साल टेनिस अधिकारियों ने प्रतिबंधित दवा मान लिया था।
Very important for me to come out and speak about this in front of all of you because throughout my
मुझे लगा कि इस बारे में खुलकर सामने आऊं और आपसे बात करूं, क्योंकि मेरे लंबे करियर में मैं सभी चीज़ों को लेकर ईमानदार रही हूं और अपने काम को पूरी जिम्मेदारी और पेशेवराना अंदाज में करती हूं। मैंने काफ़ी बड़ी गलती की और अपने फैंस और उस खेल को नीचा दिखाया जिसे मैं 4 साल की उम्र से खेल रही हूं और जिससे मुझे इतना प्यार है। मुझे पता है कि मुझे इसके नतीजे भुगतने होंगे, लेकिन मैं अपना करियर इस तरह ख़त्म नहीं करना चाहती और मुझे उम्मीद है कि मुझे एक और मौका दिया जाएगा। ये थे टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक अदालत ने राष्ट्रपति रिसेप तैयब अर्दोगान के विरोधी से जुड़ी एक समाचार एजेंसी को ट्रस्टियों के हवाले करने को कहा है। इससे पहले देश के सबसे बड़े विपक्षी समाचार पत्र जमन को सरकार अपने कब्जे में ले चुकी है। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ऐलान किया है कि वो अमरीका के आगामी राष्ट्रपति चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार के बतौर नहीं लड़ेंगे। अमरीकी सरकार ने कहा है कि वो 2009 से अब तक चरमपंथ के खिलाफ चल रही लड़ाई में अमरीकी ड्रोन हमलों में मारे गए लोगों की तादाद उजागर करेगी। इसमें दुश्मन के लड़ाके और नागरिकों की संख्या भी शामिल होगी। ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति बेजी कायद असेप्सी ने कहा है कि सरकार ने दक्षिणी शहर बेन ग्वेरडान में हालात पर काबू पा लिया है। इस शहर पर इस्लामी लड़ाकों ने बड़ा हमला किया था जिसमें 45 लोग मारे गए थे। हमला सेना और पुलिस के ठिकानों पर किया गया था। व्हाइट हाउस ने कहा है कि इसराइली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ होने वाली अपनी बैठक रद्द कर दी है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है मार्च की 8 तारीख और दिन मंगलवार, और अगर आज 8 मार्च की तारीख है तो जाहिर है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और आज से भारत में 2020 विश्व कप टूर्नामेंट भी शुरू हो रहा है। उन सब पर भी होगी बातें, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सोमालिया से। सोमालिया में हुए एक अमरीकी ड्रोन हमले में चरमपंथी गुट अल शबाब के कम से कम 150 सदस्य मारे गए हैं। पेंटागन ने इस बात की पुष्टि कर दी है। हालांकि अल शबाब की ओर से इस बारे में अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुना रहे हैं अजय शर्मा।
अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने सोमाली चरमपंथी संगठन अल शबाब के 150 से ज्यादा सदस्यों को मार दिया है। ये कार्रवाई अल शबाब पर हवाई हमलों के जरिए की गई। यह हमला शनिवार को किया गया था और राजधानी मोगादिशु के उत्तर में करीब 195 किलोमीटर दूर अल शबाब के कैंप को निशाना बनाया गया। इस कैंप पर काफी समय से नजर रखी जा रही थी। व्हाइट हाउस प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा कि मानव रहित और दूसरे विमानों ने रूसो नाम के एक ट्रेनिंग कैंप को निशाना बनाया है।
The fighters who were scheduled to depart the camp pose an imminent threat to US and African Union mission forces in Somalia.
वो लड़ाके इस कैंप को छोड़कर हमला करने वाले थे और सोमालिया में मौजूद अमरीकी और अफ्रीकी यूनियन के सैनिकों के लिए खतरा बन गए थे। उनको और उनके चरमपंथी लड़ाकों को खत्म करने से सोमालिया में अल शबाब की क्षमता घटेगी और वो नए सदस्यों की भर्ती, नए अड्डे बनाने और सोमालिया में अमरीकी अफ्रीकी मिशन सैनिकों पर हमले नहीं कर पाएंगे। ये एक अच्छी मिसाल है कि कैसे अमरीकी सेना वहाँ मौजूद सुरक्षा बलों के साथ मिलकर अपने संसाधनों और क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकती है। इस मामले में अफ्रीकी यूनियन सुरक्षा बल चरमपंथ से अब मुकाबला कर सकते हैं और अमरीकी हितों की रक्षा कर सकते हैं। ये थे व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट। अलकायदा से जुड़े चरमपंथी संगठन अल शबाब को साल 2011 में अफ्रीकन यूनियन के शांति सैनिकों ने मोगादिशु से बाहर कर दिया था, लेकिन वो काफी समय से पश्चिमी ताकतों के समर्थन से बनी सरकार को गिराने के लिए हमले करता रहा है। संगठन ने कहा था कि उसने पिछले महीने सोमालिया के शहर बायदोआ में एक भीड़भाड़ वाले रेस्टोरेंट पर हमला किया था।
तो ये थे अजय शर्मा।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो क्यों ना कुछ महिलाओं के बारे में बात कर ली जाए। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन की पहल पर बीते शनिवार और रविवार को देश भर की महिला जन प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश रहे, जिससे कई महिलाओं को काफी निराशा भी हुई। यह बिल कई बार संसद में आ चुका है, लेकिन अब तक पास नहीं हो पाया है। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन से बात की और पूछा कि संसद में इस बिल के सफर की शुरुआत कैसे हुई।
सितंबर 12, 1996 जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे, उस सरकार में इस विधेयक को पहली दफा पेश होने की कोशिश की। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि वो जो कोलिशन सरकार थी, जिसको कांग्रेस बाहर से समर्थन कर रही थी, उसके दो मुख्य स्तंभ मुलायम सिंह यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी थे, घोर विरोधी आरक्षण विधेयक के। जून 1997 में एक फिर प्रयास हुआ और उस समय शरद यादव जी वो भी इसकी बहुत निंदा करते थे। उनकी जो बयान है वो आज भी मेरे कानों में गूंज रही है, बरकटी महिलाओं को, वो हमारी महिलाओं के बारे में क्या समझेगी, वो क्या सोचेगी। इस ढंग से वो महिलाओं को ही बंटवाने की कोशिश कर रहे थे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की एनडीए के सरकार में 12वीं लोकसभा में 1998 में एम तंबीदुरई, जो आज के तारीख में डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा में, उस समय वो कानून मंत्री थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और उस समय तुरंत ये राष्ट्रीय जनता दल के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव वो वेल ऑफ द हाउस में पहुंच गए और उस समय स्पीकर थे जीएमसी बाले योगी, उनके हाथ से कागज छीना और फाड़ दिया। फिर एनडीए सरकार ने दोबारा 13वीं लोकसभा में 1999 में फिर ये विधेयक को पेश करने की कोशिश की। करीब करीब वही दृश्य हमें देखने को मिला, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, रूल बहुत क्लियर है कि ये शोर शराबे में बिल्कुल पारित नहीं हो सकती है। ये पारित जब होगी जब पूरी तरह डिबेट होगी, फिर वोटिंग होगी, डिविजन ऑफ वोट्स वगैरह, और टू थर्ड मेजोरिटी हर एक हाउस में, एक जॉइंट सेशन की भी कोई गुंजाइश नहीं है, राज्यसभा लोकसभा दोनों में टू थर्ड मेजोरिटी से पास होना चाहिए ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर 2003 में फिर एनडीए सरकार ने एक और प्रयास किया, लेकिन फिर यही हाल हुआ। क्वेश्चन आवर में ही एमपीज ने वेल ऑफ द हाउस पहुंच गए और शोर शराबे के बीच में घोषित किया कि हम ये बिल को बिल्कुल पारित नहीं होने देंगे।
लेकिन राज्यसभा में 2010 में ये बिल पास हुआ।
उस दिन के दृश्य तो आज तक मुझे याद है। सोनिया गांधी जी ने आदेश दे दिया कि राज्यसभा में पारित होना ही है, और बीजेपी की ओर से अरुण जेटली जी ने उनको आश्वासन दिया कि बीजेपी की ओर से पूरा समर्थन है, लेफ्ट का भी समर्थन था। जेडीयू ने भी बल्कि अपना समर्थन दिया। उस दिन पहली दफा मार्शल्स का इस्तेमाल किया, जो पहली सरकारें भी कर सकती थी लेकिन नहीं की, और उसके बाद अच्छा खासा डिबेट हुआ, अच्छी डिबेट थी और बिल पारित हो गया राज्यसभा में।
अब फिलहाल इस बिल की क्या स्थिति है?
ये बिल को राज्यसभा में इस उपदेश से लेके आया कि एक बार राज्यसभा में पारित होती तो बिल जीवित रहती, लेकिन जो गलती जो किया यूपीए की सरकार, वो तुरंत ये बिल लोकसभा को ट्रांसमिट कर लिया। उनकी शायद उम्मीद थी कि जिस ढंग से राज्यसभा में पारित हो गया उसी ढंग से लोकसभा में पारित होगा, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस के ही सदस्य और बीजेपी के सदस्य गोपीनाथ मुंडे जैसे प्रभावशाली ओबीसी लीडर, उन्होंने खुल्लम खुल्ला आवाज उठाया ये बिल के खिलाफ, और उन्होंने अपने साथ बाकी जो ओबीसी एमपीज हैं बीजेपी के, उनको इकट्ठा करके ये क्लियर मैसेज संदेश दे दिया सुषमा स्वराज जी और एलके अडवाणी जी को, अगर वोट आया तो इसके खिलाफ वोट करेंगे, हम पार्टी का व्हिप नहीं मानेंगे। तो ऐसे परिस्थितियों में बीजेपी बड़ी दुविधा में पड़ गई और इसी तरह वो बिल टल गया लोकसभा में। तो अभी बिल को लाना है तो बिल्कुल फ्रेश पूरी जो एक्सरसाइज है वो दोबारा शुरू होना पड़ेगा। मुझे भी लगता है कि अगर एनडीए अपना मन बना लेगी और लाएगी तो पहले राज्यसभा में ही पारित करेगी। हालांकि आप देखेंगे तो टेक्निकली बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस, ये तीन पार्टी इकट्ठा होंगे तो ये बिल तो वैसे की वैसे पास होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर विरोध के कारण ये बिल इतना आसान नहीं होगा पारित करना।
तो ये बिल इतना आसान नहीं होगा पारित करना, बता रही थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामा सेशन। तो ये तो बात हुई महिला बिल की, लेकिन संसद में बीते हफ्ते बजट पेश हुआ, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस हफ्ते भी संसद में कई अहम बिल आने वाले हैं। कल महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, इसलिए आज से शुरू हो रहे हफ्ते में क्या रहेगा एजेंडा, इसी को जानने के लिए हमारे सहयोगी वात्सल राय ने केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से बात की।
लोकसभा में जो राष्ट्रपति अभिभाषण है उस पे जो है धन्यवाद प्रस्ताव पूरा हो चुका है, रेलवे बजट है, जनरल बजट है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा अभी पूरी नहीं हुई है और वो चर्चा कल होगी। उसके साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण बिल हैं जो डिबेट होगा, डिस्कशन होगा और उम्मीद है कि पास होगा, जिसमें कि रियल एस्टेट बिल भी है जो लगा हुआ है, उसके अतिरिक्त जो है वो एंटी करप्शन बिल है, चाइल्ड लेबर बिल है और वाटरवे बिल है, कई और महत्वपूर्ण बिल है वो भी होंगे पास।
एक मुद्दा विपक्ष जैसे बड़े जोर शोर से उठा रहा है और सरकार की तरफ से भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, ईपीएफ पर टैक्स का मुद्दा, क्या इस दिशा में कोई बात देखने को आएगी?
टैक्सेशन का जो टैक्स वाला इशू है उस पर जो विपक्ष कह रहा है वो उसके तर्क में कोई दम नहीं है, लेकिन उसको लेकर के परसेप्शन थोड़ा सा खिलाफ करने की और खराब करने की कोशिश हुई है। उसके बारे में सरकार विचार कर रही है क्या करना है।
एक प्रधानमंत्री की ओर से सुझाव आया था कि 8 मार्च जो महिला दिवस है उस दिन सिर्फ महिलाएं सांसद हैं वही संसद में अपनी बात रखें, इस दिशा में क्या कुछ फैसला हो पाया है?
बहुत अच्छा सुझाव दिया है और निश्चित तौर से, क्योंकि जो सदन है उसको उसका संचालन स्पीकर लोकसभा में और चेयरमैन साहब राज्यसभा में करते हैं, तो उस सुझाव को हमारी कोशिश होगी कि चेयर जो है वो उस सुझाव का सम्मान करते हुए, क्योंकि महिला दिवस है और निश्चित तौर से महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बोले, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ये हमारी कोशिश होगी।
ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आज से भारत में 2020 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी टीम शामिल होगी कि नहीं इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका है। पाकिस्तान की सुरक्षा टीम ने कल हिमाचल के धर्मशाला में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। धर्मशाला में भारत और पाकिस्तान की टीमों के बीच 19 मार्च को मुकाबला होना है। हिमाचल में कई संगठन पाकिस्तानी टीम के आने का विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर हमारे सहयोगी दिनेश उप्रेती ने शिमला में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार अश्वनी शर्मा से बात की और जानना चाहा कि पाकिस्तान सुरक्षा दल के दौरे में क्या कुछ हुआ।
देखिए, पाकिस्तान की एक जो दल है उच्च स्तरीय, कल धर्मशाला में पहुंचा था। उन्होंने वहां पे जिला प्रशासन, HPCA जिसके अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी हैं, और BCSAI जिसके सेक्रेटरी भी अनुराग ठाकुर जी हैं, उनसे भी चर्चा करी। और उन्होंने जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका भी दौरा किया और जितने सुरक्षा के इंतजाम थे उसके बारे में जायजा लिया। और कुछ उन्होंने सवालात भी किए कि किस तरह की सिक्योरिटी आपने, कितने लेयर सिक्योरिटी के बनाए हैं, या अंदर क्या सिक्योरिटी रहेगी, शहर के बाहर क्या इंतजाम रहेगा, गाड़ियों कैसे आएंगी, किन लोगों को अलाउ करेंगे, किस तरह के ऑडियंस एक्सपेक्टेड है, सारे सवाल पूछे गए उनको और उन्होंने जवाब दिया। और जो मेरी सूचना है, देर रात तक डिप्टी कमिश्नर जो ऑफिस है धर्मशाला में, वहां भी इनकी चर्चा होती रही अधिकारियों से।
सीमा के दोनों तरफ से अलग अलग किस्म के बयान आ रहे हैं, लेकिन धर्मशाला का माहौल कैसा है?
देखिए, माहौल वहां पे ठीक है, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक मैच नहीं होना, वहां पे 10 मैचेस रखे गए हैं। उसके लिए सरकार ने एक सिक्योरिटी का वहां नेटवर्क तैयार किया है। वीरभद्र सिंह जो मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने पहले कुछ परिस्थितियों को देख के इस बात का कहा था कि मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन पिछले दिनों राज्य हाईकोर्ट है वहाँ एक PIL फाइल करेगी। वहाँ के राज्य सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार अपनी जो संवैधानिक ड्यूटी है उसको पूरा करेगी और मैच के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। अब कुछ ये मामला राजनीतिक हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं अनुराग ठाकुर हिमाचल से BJP के MP भी है और यहाँ पे सरकार इस समय कांग्रेस की है। पीछे जो पठानकोट में इंसिडेंट हुआ उसमें कुछ लोग शहीद भी हुए, वो कुछ सेंटीमेंट्स हैं और मुझे लगता है विरोध भी होगा, लेकिन जो देखने वाले दर्शक है वो चाहते हैं कि मैच हो, ऐसी हमारी जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं।
जांच दल जो आया हुआ है उसका और कोई कार्यक्रम है क्या? केंद्र के किसी मंत्री से मिलने का कार्यक्रम है या कब तक ये रुकेगा जांच दल यहाँ?
देखिए, जांच दल ने अभी किसी पत्रकार वार्ता नहीं करी है, ना किसी प्रेस वाले से उन्होंने 1-to-1 बात करी है, लेकिन ये हमने पता लगाया है कि क्या वो राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से मिलेंगे। हाँ, ऐसा पता चला है कि अभी तक उन्होंने कोई इस मामले में कोई अपॉइंटमेंट नहीं मांगी है सरकार से, और अब देखते हैं आज का उनका क्या प्रोग्राम है। अभी तक उन्होंने अपने पूरे पत्ते खोल नहीं है, क्या प्रोग्राम लेके आए हैं, शायद उसको BCCI ही कोऑर्डिनेट कर रही है।
शिमला से ये थे पत्रकार अश्विनी शर्मा। और आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आज कौन सी खबरें हैं जिन पर रहेंगी हम सबकी नजरें।
भारत में आज से छठा ICC वर्ल्ड T20 क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जो 3 अप्रैल तक चलेगा। इसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। ओमान की टीम इसी चैंपियनशिप के साथ अपनी शुरुआत कर रही है। T20 की शुरुआत के दिन आज नागपुर में 2 मैच होंगे, पहले में जिम्बाब्वे हांगकांग से तो दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम स्कॉटलैंड से भिड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज एयर इंडिया की सभी घरेलू उड़ानों में क्रू और स्टाफ महिलाएं होंगी। एयर इंडिया में करीब 3,500 महिला कर्मचारी हैं। रविवार को महिला दिवस से पहले एयर इंडिया ने नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को तक पूरी तरह महिला स्टाफ के साथ सबसे लंबी उड़ान भरी थी। सरकार आज से गोल्ड बॉन्ड स्कीम के शेयरों का तीसरा हिस्सा लॉन्च कर रही है। इसका मकसद सोने की बजाय डीमैट और पेपर में सोने की खरीद को बढ़ावा देना है। स्कीम आज से 14 मार्च तक चलेगी और बॉन्ड 29 मार्च को जारी किए जाएंगे। गोल्ड बॉन्ड की कीमत 2,916 रुपए प्रति ग्राम रखी गई है। महाराष्ट्र में आज गुड्स ट्रांसपोर्टर और निजी बस ऑपरेटर एक दिन की हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल सरकार के उस हालिया फैसले के खिलाफ है जिसमें वाहन परमिटों के नवीनीकरण की फीस बढ़ाई गई है। ट्रांसपोर्टर फेडरेशन ने 15 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान भी किया है। पंजाब विधानसभा में आज राज्यपाल के संबोधन के साथ बजट सत्र शुरू होगा। ये शिरोमणि अकाली दल और भाजपा गठबंधन सरकार का आखिरी बजट सत्र होगा, क्योंकि अगले साल की शुरुआत में राज्य में विधानसभा चुनाव है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जूमा आज से 2 दिन के लिए नाइजीरिया यात्रा पर हैं। उनकी यात्रा नाइजीरिया के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी के निमंत्रण पर हो रही है। जूमा नाइजीरिया की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे। आज ही कई कारों के मॉडल लॉन्च हो रहे हैं। रोल्स रॉयस का मॉडल डॉन आज भारत समेत दुनिया भर में लॉन्च हो रहा है। डॉन रैथे कूपे का ओपन टॉप वर्जन है। मारुति की कार वितारा ब्रेजा आज मुंबई में लॉन्च होगी। इसे मारुति सुजुकी की पहली सब कॉम्पैक्ट SUV माना जा रहा है। उधर जर्मन ऑटो निर्माता मर्सिडीज बेंज अपनी मेबैक S600 गार्ड आज लॉन्च कर रही है। ये इससे पहले आई मेबैक S600 लग्जरी सेडान का आर्मर्ड वर्जन है। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण की वजह से इंडोनेशिया और उत्तरी प्रशांत महासागर पर अंधेरा छा जाएगा। नासा ने सूर्य ग्रहण की घटना को वेबकास्ट करने का फैसला किया है। नासा के वैज्ञानिक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल प्लस के जरिए लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे।
और अब चलते हैं जयपुर। जयपुर का श्याम नगर मेट्रो स्टेशन देश का पहला महिला शक्ति रेलवे स्टेशन है, जहां सभी पदों पर महिलाएं तैनात हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जानते हैं वहां तैनात महिलाएं इस बारे में क्या सोचती हैं। सुनिए जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
जयपुर का श्याम नगर मेट्रो स्टेशन देखने में तो यह और स्टेशनों की तरह ही है, पर फिर भी बहुत खास है, क्योंकि यहाँ स्टेशन कंट्रोलर से लेकर ग्राहक सेवा अधिकारी और टिकट ऑपरेटर से लेकर हाउसकीपिंग और सफाई कर्मी तक सभी पदों पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं कार्यरत हैं। यह देश का पहला महिला शक्ति रेलवे स्टेशन है। बीबीसी ने यहाँ कार्यरत महिला स्टाफ से उनका अनुभव जाना। स्टेशन कंट्रोलर यशोदा कुमारी का कहना था कि महिलाएं यहां अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं।
हमारे यहां इवनिंग शिफ्ट जो है 2 से 10 बजे तक का है, और 10 बजे तक अगर वो यहां रुक रही है और यहां सारी लेडीज है, तो वो अपने आप को सेफ महसूस करती है कि हम अगर लेडीज के साथ रुक रहे हैं तो एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेशन एक इतना बड़ा एरिया है, लार्ज एरिया है, तो वो बेफिक्र होकर बिना किसी हिचकिचाहट के वो काम कर सकती है। और जेंट्स स्टाफ अगर होंगे तो उनको जैसे कुछ सेपरेट एरिया, और वहाँ जाने पे भी वो डरती है कि पता नहीं पीछे से कौन आ जाए और कब कौन सा क्या हादसा हो जाए।
ग्राहक सेवा अधिकारी कविता मेहरा कहती हैं यहाँ उन्हें अपनी काबिलियत सिद्ध करने का मौका मिला है।
ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज है जो पूरे भारतवर्ष में किसी भी मेट्रो में जहां तो चल रही है 5 सिटीज में, सिर्फ और सिर्फ जयपुर में ही एक ऐसा श्याम नगर स्टेशन बनाया हुआ है जहां पर एक महिला शक्ति रेलवे स्टेशन के नाम से महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन है ये। और अच्छा लगता है सब जगह पे ये देख करके कि महिलाएं किसी भी फील्ड में आज पुरुषों से कम नहीं है, और ये श्याम नगर स्टेशन बना के हमने प्रूफ भी किया है।
जयपुर की यात्री भी इस स्टेशन की सुविधा के कायल लगे। कुछ यात्रियों ने बीबीसी को बताया,
फॉर लेडीज के लिए तो बहुत अच्छा है, हेल्पफुल रहता है, और एक खुलकर आराम से आप लोग कहीं पर भी जा सकते हैं।
मुझे और स्टेशन से बढ़िया जहाँ पे महिला है वहाँ अच्छा सुविधा मिलती है, अच्छी बात है, और वहाँ अच्छा लगता है, प्यार से अच्छी सुविधा से बात करती है, बड़े शिक्षित तरीके से, और मर्द क्या है दूसरी तरीके से बात करते हैं, इसलिए महिलाओं का व्यवहार अच्छा लगता है हमको।
सभी स्टाफ महिला होने से यहाँ कंफर्ट लेवल बहुत बढ़िया है। टिकट ऑपरेटर अनीता को फख्र है कि देश में एक स्टेशन तो ऐसा है जो नारी शक्ति को समर्पित है।
बिल्कुल, इसको अलग से नाम दिया गया, नारी शक्ति का नाम दिया गया कि स्टेशन का नाम ही हम पे रखा गया है नारी के ऊपर, तो क्यों नहीं हमको भी थोड़ा सा गर्व महसूस होगा। हाँ चलो, हमारे नाम पे स्टेशन बना है, शायद भारत में पहला स्टेशन होगा मेट्रो स्टेशन जिसका नारी के नाम पे निकाला है। अपने आप में फख्र महसूस होता है, एक शक्ति सी जागरूक होती है मन में कि हाँ हम सेफ है बिल्कुल।
पर क्या सिर्फ और सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित ऐसे कार्यस्थल होने चाहिए? इस पर जब हमने जेंडर एक्सपर्ट डॉक्टर करुणा पांडे की राय जानी तो उन्होंने बताया,
समानता पर आधारित है, दोनों को समान होना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे आप पुरुष को बढ़ा दें, कहीं महिला को बढ़ा दें, और कभी ये परंपरा वैसे मेरे हिसाब से गलत है दोनों। और फिर आप बिल्कुल अलग से माहौल देते हैं, जैसे कि कोविड में मान लीजिए बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, कोई गर्ल्स स्कूल में पढ़ रही है कोई लड़की, और फिर उसको कोविड में डालेंगे तो उसकी स्थिति जो होगी, उसी तरीके की शायद इन महिलाओं को जब हम बाहर कहीं दोनों के साथ डाल देंगे तो फिर शायद वही वाली मेल मेंटेलिटी तो वही रही, बदला तो नहीं।
उधर जयपुर मेट्रो की निदेशक ऑपरेशंस चैनसुक जिनकर ने बीबीसी को बताया कि यह स्त्री पुरुष वर्ग को विभाजित या अलग करने का नहीं, बल्कि उस सोच को बदलने का प्रयास है जिसमें ऐसा समझा जाता है कि महिलाएं रेलवे जैसी हैवी इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकती।
दुनिया भर में जो रेल रोड इंडस्ट्रीज है उसमें महिलाओं का इंटेक जो है वो काफी कम है, 5% से भी बहुत जगह कम है। तो ये एक सिर्फ एग्जाम्पल क्रिएट करने के लिए, हम कहीं जेंडर डिफरेंस और जेंडर सेपरेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमारी एक सोच ये रही थी कि कुछ समय के बाद में जो उनके काउंटर पार्ट जो मेल है वो सोचे कि नहीं ये भी हमारे बराबर काम कर सकती है। जहाँ यदि दोनों एक जगह काम करते हैं तो हमेशा पुरुषों में ये रहता है कि नहीं ये काम महिला नहीं कर पाएगी, ये तो मैं कर लेता हूँ, वो सोच से ये एक हटके उनकी सोच बदलने का एक प्रयास है, अदरवाइज हम जेंडर सेपरेशन नहीं कर रहे हैं।
बहरहाल स्त्री पुरुष समानता की चर्चा के बीच जयपुर मेट्रो द्वारा किया गया यह अनूठा प्रयोग सराहा गया है और उम्मीद है कि जिस सोच के साथ इसे शुरू किया गया है उससे कार्य संस्कृति की गाड़ी कभी पटरी से नहीं उतरेगी। जयपुर से आभा शर्मा।
और अब बात अखबारों की, अजय बताएं क्या कहते हैं अखबारों की सुर्खियां।
जी, ज़्यादातर अखबारों ने आज हिंदी अंग्रेज़ी सभी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को पहले पन्ने पर जगह दी है। कई ने अपने मास्टहेड को चेंज किया है, जैसे दैनिक भास्कर मेरे सामने है, उसने तीन कहानियां ली हैं, रिश्तों की कहानियां, जिसमें माँ बेटी और बहन का के ज़रिए उसने बताने की कोशिश है कि स्त्री किस तरह से जो है आज की दुनिया में अपना रोल रीडिफाइन कर रही है। उसी तरह से अमर उजाला है, उसने एवरेस्ट पर जाने वाली तीन महिलाओं को चुना है, जिनमें एक अरुणिमा, तुलिका और एक अपर्णा नाम से एक महिलाओं की छोटी छोटी कहानियां दी हैं पहले ही पन्ने पर। तीसरी जो अखबार है हिंदुस्तान है, उसने भी इसी तरह से अपने मास्टहेड के ठीक नीचे ऐसी तीन महिलाओं की कहानी कही है, बताई है, जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार से हैं, जिन्होंने अपने सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए दहेज और उन सब के खिलाफ जो है, उन जैसे शराबी दूल्हे के संग शादी से इनकार और शौचालय नहीं तो मायके से लौट आई, इस तरह की कहानियों को उन्होंने जगह दी है। नवभारत टाइम्स ने भी ऐसे ही दिखाया है। इसके अलावा एक प्रमुख खबर जो देखने में आ रही है वो जनसत्ता के पहले पन्ने पर लीड की तरह दी गई है कि रविशंकर, श्री रविशंकर का आर्ट ऑफ लिविंग का जो समारोह दिल्ली में होना था उसमें राष्ट्रपति ने
जाने से मना कर दिया।
पर्यावरण की कुछ याचिकाएं लगी थी जो हरित अधिकरण जो है उसमें याचिका दाखिल की गई थी कि इससे यमुना के जल ग्रहण क्षेत्र पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा कोटला में क्रिकेट का रास्ता साफ हो चुका है, नवभारत टाइम्स ने एक खबर दी है। इसके सिलसिले में जो एक साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के बीच में जो टसल चल रही थी वो सॉल्व हो गया है।
जी, बहुत शुक्रिया अजय आपका अखबारों की समीक्षा की। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूँ आदेश कुमार गुप्त। बीते रविवार को भारतीय क्रिकेट टीम ने मेजबान बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर एशिया कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट अपने नाम किया। अब भारत की नजरें आज से शुरू होने जा रहे ICC विश्व कप 2020 टूर्नामेंट पर होगी। एशिया कप जीतने के साथ ही भारत ने ICC 2020 रैंकिंग में भी अपना पहला स्थान भी बनाए रखा है। भारत के 127 अंक हैं, जबकि दूसरे स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज के 118 अंक हैं। विश्व कप में भारत ग्रुप दो में न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ है। भारत अपना पहला मैच 15 तारीख को न्यूजीलैंड के विरुद्ध नागपुर में खेलेगा। भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुश हैं कि उनकी टीम के सभी खिलाड़ी फिट हैं और फॉर्म में भी हैं।
अच्छी बात यह है कि हम ऑस्ट्रेलिया से खेलते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं, विच मीन्स टीम किसी भी कंडीशन में एक सेटल्ड टीम लग रही है। T20 का वार्म अप गेम्स खेलेंगे, वर्ल्ड कप का, उसके बाद प्रॉपर टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आगे बढ़ी है। प्लेयर्स का जो फिटनेस है, विल हैव टू कीप एन आई ऑन द फिटनेस, और वो सारी चीज़ें अगर हम ध्यान दे सकते हैं तो आई थिंक इट्स वी आर ऑल रेडी फॉर द T20 वर्ल्ड कप।
वैसे आज विश्व कप में दो मुकाबले खेले जाएंगे। नागपुर में खेले जाने वाले इन मुकाबलों में पहले मैच में हांगकांग का सामना जिम्बाब्वे से और दूसरे मैच में अफगानिस्तान का सामना स्कॉटलैंड से होगा। उल्लेखनीय कि ग्रुप एक में शामिल इन टीमों में से एक टीम अगले दौर में जगह बनाएगी। इसी बीच श्रीलंकाई टीम के तेज गेंदबाज लसित मलिंगा ने 2020 क्रिकेट में अपनी टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। लसित मलिंगा चोटिल हैं और उन्होंने पिछले दिनों एशिया कप में भी केवल एक ही मुकाबला खेला था। उनकी जगह अब एंजेलो मैथ्यूज टीम की कमान संभालेंगे। वहीं पाकिस्तान ने विश्व कप के लिए अपनी टीम में बदलाव करते हुए खुर्रम मंजूर की जगह अहमद शहजाद को शामिल किया है। दरअसल एशिया कप में पाकिस्तान के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सके थे।
और अब प्रमुख समाचार।
BBC समाचार। अमरीकी सेना ने सोमालिया में चरमपंथी संगठन अल शबाब के ठिकानों पर हमले करके 150 से ज्यादा लोगों को मारने का दावा किया है। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने कहा है कि शरणार्थी संकट को लेकर उनका तुर्की के साथ एक समझौता हुआ है। रूसी टेनिस स्टार मारिया शारापोवा ने माना है कि वो इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए हुए ड्रग टेस्ट में फेल रही थीं। तुर्की के सरकारी मीडिया के मुताबिक अदालत ने राष्ट्रपति रिचेप तैयब अरदोगान के विरोधी से जुड़ी एक समाचार एजेंसी को ट्रस्टियों के हवाले करने को कहा है। न्यूयॉर्क के पूर्व मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ऐलान किया है कि वो आगामी राष्ट्रपति चुनाव में आज़ाद उम्मीदवार के बतौर नहीं लड़ेंगे। अमरीकी सरकार ने कहा है कि वो 2009 से अब तक चरमपंथ के खिलाफ चल रही लड़ाई में अमरीकी ड्रोन हमलों में मारे गए लोगों की तादाद उजागर करेगी। BBC समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली राजेश चौहान ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी कार्यक्रम विश्व भारती में 8 बजे। लेकिन पल पर बदलती खबरों के लिए आप 24 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।